या डाउनलोड कीजिए फ्री ईआवाज ऑफिशियल ऐप। ईआवाज टीवी को आप तमाम आईपीटीवी बॉक्सेस पर देख सकते हैं और अब ईआवाज टीवी रोकू ऐप पर भी दस्तियाब है। आज ही रोकू ऐप अपने स्मार्ट टीवी में डाउनलोड कीजिए बिल्कुल फ्री।
खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम से हम आपको रेडियो प्रोग्राम मसीह की आवाज़ वॉइस ऑफ क्राइस्ट में खुशामदीद कहते हैं। ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में हर इतवार सुबह 8 से 9 बजे तक क्राइस्ट आर किंग लूथरन चर्च मिसिसागा के ताबुन से पेश किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम की बदौलत आपकी जिंदगी तब्दील हो सकती है और ये आपकी जिंदगी के लिए बाबरकत साबित होगा। प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहें और अपनी कीमती राय से हमें आगाह कीजिए। आज के मेजबान आपकी खिदमत में हाजिर हैं।
रेडियो मसीह की आवाज आपकी खिदमत में हाजिर है। तमाम सुनने वालों की खिदमत में कमल डीन और जनाब पास्टर जेम्स लूप की जानब से बहुत बहुत सलाम कबूल हो और खुदा यीशु मसीह के जलाली और कादर नाम में खुश आमदेद कहता हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रेडियो मसीह की आवाज़ हर इतवार सुबह 8 से 9 बजे तक आपकी खिदमत में WTOR AM 770 मीटर बैंड के जरिए पेश किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप इस मसीही प्रोग्राम के जरिए से और खुदावंद के जिंदा कलाम की बदौलत जरूर बरकत पाते होंगे। बाइबल मुकद्दस कहती है, पस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। आप इस प्रोग्राम को eawaz.com के जरिए भी सुन सकते हैं और अगर आप टेलीफोन के जरिए सुनना चाहें तो टेलीफोन नंबर है 647-557-1017 647-557-1017। और आप इस प्रोग्राम को फेसबुक के जरिए देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। जस्ट गो टू द फेसबुक एंड सर्च फॉर मसीह की आवाज़। आप अगर आप रेडियो स्टेशन पर हमसे बातचीत करना चाहें तो आप ज़रूर कॉल कीजिए, हम आपसे ज़रूर बात करेंगे। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जब पादरी साहब मैसेज ख़त्म कर दें, इख्तिताम हो जाए मैसेज का, देन वी विल ओपन द लाइन। हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 416-620-1778 416-620-1778। तो अजीज़ो आएं, इससे पेशतर ज़्यादा वक्त गुजरे, हम दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को भी शुरू करते हैं। जनाब पास्टर जेम्स लू,
आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने जहन जो हैं वो आलम बाला पर लगाएं, खुदा से राब्ता कायम करें। खुदा उन खुदा हमारे आसमानी बाप, हम शुक्र करते हैं कि तूने हमें अपने बच्चे बनाया है और हम तुझे बाप कहकर पुकार सकते हैं। खुदा उन हम शुक्रगुजार हैं ज़िंदगी के लिए जो तूने हमें दी है कि हम इस जिंदों की ज़मीन पर एक और दिन गुजार सकते हैं। खुदावंद हम शुक्रगुजार हैं अपने मुल्क कनाडा के लिए जिसमें हम आराम और चैन की ज़िंदगी गुजारते हैं। हम शुक्रगुजार हैं उन तमाम सुनने वालों के लिए जो इस वक्त अपने रेडियो और कंप्यूटर ऑन करके तेरे पाकलाम के ज़रिए से तेरी आवाज़ को सुनना चाहते हैं। बख्शते के ये आवाज़ उनके दिलों तक पहुँचे और उनके दिल तेरी तरफ मबजूल हों। खुदावंद हम दुआ करते हैं उन तमाम कमज़ोरों बीमारों के लिए जिन्होंने अपने नाम हमें भेजे हैं कि उनके लिए दुआ की जाए, क्योंकि जब दुआ तेरे नाम से की जाती है तो आए खुदावंद तेरा नाम एक शाफी नाम है, यीशु मसीह के नाम में कुदरत है, और आए खुदावंद उस दुआ से लोग अच्छे हो जाते हैं, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। हम शुक्रगुजार हैं अच्छे मौसम के लिए जो तूने हमें दिया है और बख्श दे के ये अच्छा मौसम जो है हमारे दिलों को भी तब्दील करे, जबकि मौसम چینج ہو رہا ہے ہمارے دل بھی چینج ہوں اور آئے خداوند تیری طرف لگیں. یہ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے خداوند یسوع المسیح کے نام میں. آمین,
آمین. خداوند کی شفقت کی تعریف اور ثنا. خداوند کی حمد کرو اے خداوند کے بندو, حمد کرو خداوند کے نام کی, حمد کرو. اب سے ابد تک خداوند کا نام مبارک ہو. آفتاب سے طلوع سے غروب تک خداوند کے نام کی حمد ہو. خداوند سب کاموں پر بلند و بالا ہے, اس کا جلال آسمان سے برتر ہے. خداوند ہمارے خدا کی مانت کون ہے جو عالم بالا پر تخت نشین ہے, جو فروتنی سے آسمان اور زمین پر نظر کرتا ہے. وہ مسکین کو خاک سے اور محتاج کو مزبلہ پر سے اٹھا لیتا ہے تاکہ اسے عمرہ کے ساتھ یعنی اپنی قوم کے عمرہ کے ساتھ بٹھائے. وہ بھانج کا گھر بساتا ہے اور اسے بچوں والی بنا کر دلشاد کرتا ہے. خداوند کی حمد کروں. خداوند اپنے زندہ اور مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے. آمین. عزیزوں آئیں ایک خوبصورت گیت سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں.
सुना को जिसने पुकारा पाया जीवन में उसने छुटकारा मिलती शांति चंगा पापों की क्षमा उद्धार मुक्ति तेरे जिसने पुकारा पाया जीवन में उसने छुटकारा मिलती शांति चंगा पापों की क्षमा उद्धार मुक्ति तेरे बिना है कहां तुम्हारे है मेरे खुदा यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा यीशु नाम है कितना महान यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा यीशु नाम है कितना सारे नामों से ऊंचा यीशु नाम है कितना यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा यीशु नाम है कितना
यीशु नाम है सबसे ऊंचा, उसका नाम महान है। आज हम देखेंगे इसी हवाला के साथ कि आज जो थीम पास्टर जेम्स लूक ने ली है एब्सोल्यूट अथॉरिटी, मुकम्मल इख्तियार, मुतलक इख्तियार, खुदा की कुदरत, फुली कंट्रोल, इसके मुतलक हम देखेंगे कि आज पास्टर जेम्स लूक हमें खुदा उनके जिंदा कलाम में से क्या बताते हैं कि वो हाउ शुड ही हैज अथॉरिटी ओवर ऑल। सो मैं दरख्वास्त करूंगा पास्टर जेम्स लूक से कि वो खुदावंद का कलाम हम तक पहुंचाएं। जनाब पास्टर जेम्स लूक।
खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदस के नाम में आमीन। सामाइन, जैसे आपने सुना कि आज का मैसेज जो है उसका जो कैप्शन है, उसका जो मजमून है, वो है मुतलक इख्तियार या मुकम्मल इख्तियार, या इंग्लिश में हम कहेंगे एब्सोल्यूट अथॉरिटी। एब्सोल्यूट अथॉरिटी ना, हम देखेंगे कि ये एब्सोल्यूट अथॉरिटी है क्या और किस तरह से बाइबल मुकद्दस हमें इसकी बात बताती है। तो इसलिए हम देखना चाहेंगे मुकद्दस लूका रसूल की इंजील और उसका 7वां बाब और 11 आयत से लेके 17 आयत तक। मैं दरख्वास्त करूंगा एल्डर साहब से कि वो हमारे लिए ये बाइबल का हिस्सा पढ़ें। मुकद्दस लूका रसूल की इंजील 7वां 11 आयत से।
थोड़े अरसा के बाद ऐसा हुआ कि वो नायन नाम एक शहर को गया और उसके शागिर्द और बहुत से लोग उसके हमराह थे। जब वो शहर के फाटक के नजदीक पहुंचा तो देखो एक मुर्दा को बाहर लिए जाते थे। वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था और वो बेवा थी और उस शहर के बतेरे लोग उसके साथ थे। उसे देखकर खुदावंद को तरस आया और उससे कहा मत रो। फिर उसने पास आकर जनाजा को छुआ और उठाने वाले खड़े हो गए और उससे कहा ऐ जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया और सब पर दहशत छा गई और वो खुदा की तमजीद करके कहने लगे कि एक बड़ा नबी हम में बरपा हुआ है और खुदा ने अपनी उम्मत पर तवज्जो की है और उसकी निस्बत ये खबर सारे यहूदिया और तमाम गिरदोनवा में फैल गई।
बहुत शुक्रिया। आप कहेंगे कि सुबह सुबह हम जनाजे की बात कर रहे हैं, मौत की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जिंदगी का हिस्सा है, गो के बड़ा गंभीर और बड़ा सैड हिस्सा है। लेकिन हमें इस पे गौर करने की जरूरत है, क्योंकि हम सब ने मौत जो है वो बरहक है और वो हर एक पे आनी है, इसलिए उससे डरना नहीं चाहिए बल्कि उसको देखना चाहिए कि मौत का मतलब क्या है और मौत जो है उसकी उसका क्या है। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि मौत जो है वो उसकी मजदूरी, गुनाह की मजदूरी मौत है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं और क्यों ये आज का मैसेज जो है आपके सामने शेयर करने वाले हैं, क्योंकि कम्युनिटी में 3 अमवात हो गई हैं पिछले हफ्ते और आज एक जनाजा भी है। और इसलिए मैं ये मैसेज जो है ये खुदा की तरफ से आया है कि मैं आपके साथ शेयर करूं, ताकि हम मौत को समझ सकें और फिर मौत से उस मौत से जी उठने को समझ सकें। क्योंकि ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि मौत जो है वो दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। नो, इट इज नॉट एंड ऑफ द स्टोरी, लेकिन मैं कहूंगा कि वो बल्कि बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी है। और वो कैसे है, क्योंकि मौत जो है वो हमारी जो फिजिकल जिंदगी है जिसमें हम रहते हैं, इस जिस्म में रहते हैं, और जब रूह जो है वो जिस्म से जुदा हो जाती है तो उसको हम मौत कहते हैं। लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि वो जब रूह जुदा हो जाती तब फिर उसके बाद क्या होता है। और मैंने बहुत दफा इसका जिक्र किया है, लेकिन मसीहत में बड़ी खूबसूरती से इस बात को बताया गया है। और ये बताया गया है क्योंकि मौत जो है वो ट्रांजिशन है, वो एक आरजी, एक तरह से माइलस्टोन है हमारी जिंदगियों में। और हमें जबूर नवीस बताते हैं कि मौत जो है, यानी जिंदगी जो है, ये जिंदगी जो है 70 नहीं तो 80 बरस, बल्कि उसके बाद तबाह। लेकिन तबाह क्या होता है, वो जो आपकी जिस्म है वो तबाह हो जाता है, लेकिन जब आप एक दूसरी दुनिया में, जिसको रूहानी दुनिया कहा जाता है, उसमें आप जाते हैं तो वो ना खत्म होने वाली जिंदगी है। तो इसलिए इसको ट्रांजिशन कहा जाता है। ये कहने के साथ आज का जो वाकया आपने पढ़ा है वो एक शहर है नायन, इसराइल में है। ऑब्वियसली वो इसराइल में है और वहां से एक जनाजा उठा है, लेकिन वो जनाजा आम नहीं है, वो एक स्पेशल जनाजा है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि वो औरत जो है वो बेवा है और उसका एक ही बेटा है। अब आप कहेंगे कि ये क्यों स्पेशल है, इसलिए है क्योंकि उस औरत ने पहले अपना खावंद खो बैठी है और वो बेवा है, और अब उसका सिर्फ एक ही बेटा है और वो एक ही बेटा उसकी सारी की सारा सहारा है। हम जानते हैं कि स्पेशली उस सोसाइटी में, आजकल भी हमारी पाकिस्तानी और इंडियन सोसाइटी में ऐसा ही होता है कि जब कोई औरत बेवा हो जाती है तो उसका पूछने वाला कोई नहीं रहता। उस वक्त भी वो सोसाइटी इससे भी बदतर थी, क्योंकि वो सोसाइटी जो थी उसमें जब औरत बेवा हो जाती थी तो उसके पास और कोई चारा नहीं होता था सिवाय भीख मांगने के, क्योंकि उसके पास कोई हुनर तो होता नहीं था, वो डोमेस्टिक औरतें थीं। लेकिन जब उसका खाविंद भी मर जाता है, बेटा भी मर जाता है, तो उसके बाद कुछ नहीं रहता। अब ये जनाजा जो जा रहा है, ये नैन का शहर है, नैन के खूबसूरत, उसको उसका लफ्जी मतलब जो है वो खूबसूरती है। अब ये खूबसूरत सा शहर है, आप कहेंगे कि जिन लोगों ने इसराइल के मुतालिक सुना है या देखा है उनको ये पता होना चाहिए कि ये तकरीबन 14 किलोमीटर साउथ ऑफ नासरत है, जहां खुदावंद यीशु मसीह वहां बड़े भले फले थे। और उसके बाद उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री का आगाज जो है वो कफरनहूम से शुरू किया था। और अगर हम इससे पहला चैप्टर पढ़ें तो वहां पे खुदावंद यीशु मसीह कफरनहूम में है, वहां उन्होंने एक मौजज़ा किया है, और उसके बाद वो किसी वजह से चल के, मैं तो सोचता हूं कि उनको तो मालूम था कि क्या होने वाला है, इसलिए वो नायन के शहर को आए हैं। और नाइन के शहर को आए हैं और उनके साथ उनके शागिर्द भी हैं और बहुत सारे लोग हैं जो उनके साथ आए हैं नाइन को। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जनाजा जो है जब भी होता है, आज भी होना है, बहुत सारे लोग वहां पे होंगे और क्यों जाते हैं, ताकि वो उस खानदान को तसल्ली दे सकें, उस खानदान को सहारा दे सकें कि इस शोक के टाइम पे वो उनको थोड़ा सी तसल्ली मिलती है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो तसल्ली सिर्फ आर्जी होती है, एक नहीं तो दो दिन, उसके बाद सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं और वो स्पेशली वो औरत जो है वो उसने अकेले रह जाना है, उसका कोई सहारा नहीं है। तो यहां पे हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो कफरनहूम से नाइन के शहर को आ रहे हैं और अब उनके साथ भी एक ग्रुप है, एक काफला है, और ये भी एक काफला है जो शहर से बाहर निकल रहा है। ये काफला जो है ये एक तरह से गमगीन काफला है, लेकिन वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ हैं वो बड़ी हंसी खुशी आ रहे हैं, वो खुदावंद के पाकलाम को सुनते हैं, वो उनसे उनके तमाम अच्छी तालीम को सुनते हैं। बयान ही इसी तरह हमारी दुनिया है, ये दुनिया भी एक सोग वाला काफला है, ये दुनिया जो है ये गम से भरी हुई दुनिया है, ये उसी तरह से जनाजे की तरह है जिस तरह कोई भी जनाजा आप देख लीजिए। लेकिन वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह के काफले में हैं वो लोग खुश हैं, वो लोग उनको तसल्ली है, उनको चैन मिलता है। कैसे मिलता है, अब यही बात हम बताना चाहते हैं कि ये कैसे चैन मिलता है। अब जब हम देखते हैं पुराने अहदनामे में जाते हैं हिस्ट्री में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि 700 साल पहले यसाया नबी इस बात की निशानदही करते हैं। 35वां बाब जो है यसाया नबी का सहीफा, उसका 35वां बाब और उसकी चंद आयात जो हैं, मैं कहूंगा एल्डर साहब से कि वो हमारे लिए पढ़ें कि वो वहां पे हमें क्या लिखा हुआ है।
कौन सी आयत है
जी, मैंने आपको अभी बताई थी,
पांचवी।
हाँ जी, पांचवी छठी।
उस वक्त अंधों की आंखें वा की जाएंगी और बहरों के कान खोले जाएंगे, तब लंगड़े हिरण की मानद चौकरियां भरेंगे और गूंगे की जुबान गाएगी, क्योंकि बियाबान में पानी और दश्त में नदियां फूट निकलेंगी।
जी हाँ, यहाँ पे हमें एक नक्शा दिया गया है, यसाया नबी जो है वो बताते हैं हमें, खुदावंद यीशु मसीह के 700 साल पहले की बात है कि वो बताते हैं कि वो एक रेस्टोरेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू होगा। अब वो रेस्टोरेशन क्या मतलब है, रेस्टोरेशन का मतलब है बहाली, किस किस्म की बहाली, रिस्टोर किया जाता है किसी चीज को, जब चीज अच्छी होती है और वो उसमें डिफेक्ट आ जाता है तो उसको रिस्टोर किया जाता है। आपने सुना होगा कि आपको कई कई दफा ये एडवर्टाइजमेंट भी आती है कि आपके लेदर के सोफे या पुराना फर्नीचर जो है हमें दें, हम उसको रिस्टोर करेंगे। तस्वीरें हैं, मेरे एक दोस्त हैं वो ये काम करते हैं कि तस्वीरें, पुरानी तस्वीरें, उनको भी रिस्टोर किया जाता है, उनको बहाल किया जाता है। बयान ही इसी तरह से जब आदम और हवा ने गुनाह किया और वो खुदा के जलाल से महरूम हो गए, तो इसका मतलब है कि वो एक अच्छी हालत से बुरी हालत में दाखिल हो गए, और जब वो गुनाह जो है वो हमारी जिंदगियों को तबाह और बर्बाद करता है। बाइबल हमें यह भी बताती है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, इसीलिए मौत वाकया होती है। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर हम उसी हालत में रहते जिसमें खुदा ने हमें खल किया था या पैदा किया था, तो हमारी ये हालत ना आती, यानी कि मौत वाकया नहीं होना थी। लेकिन जब गुनाह आ गया तो बाइबल मुकद्दस हमें बड़े क्लियरली बताती है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, इसलिए मौत वाकया होती है। और यही बात जो है, हम इंसान होते हुए हम गुनाहगार हैं। अब बहाली किस बात की है, बहाली इस बात ही है कि खुदा, थोड़े दिनों में हम क्रिसमस के सीजन में दाखिल होंगे और इसके मुतालिक हम जरा तफसील में बात करेंगे کیونکہ خدا جو ہے, اب یہ سمجھنے والی بات ہے, غور سے سنیے گا, خدا جو ہے وہ ایک تسلیسی خدا ہے, اور تسلیسی خدا کا مطلب یہ ہے کہ تین خدا نہیں ہیں بلکہ ایک ہی خدا ہے. پھر سے کہوں گا, خدا ایک ہے لیکن وہ تین صورتوں میں ہم پہ ظاہر ہوتا ہے. وہ کس طرح سے؟ کہ ایک خدا جو ہے وہ خلق کرنے والا, پیدا کرنے والا ہے, اس کو ہم باپ کہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ باپ کو باپ کیوں کہا جاتا ہے, کیونکہ وہ ایک طرح سے پیدا کرتا ہے. دوسرا جو ہے وہ بیٹا ہے, جو کہ خدا کی دوسری صورت ہے, وہ اس کو یسوع المسیح کہا جاتا ہے. جبکہ خدا جو ہے وہ میرا اور آپ جیسا جسم لے کر اس دنیا میں آتا ہے, جس کو ہم کرسمس کہتے ہیں. اور کرسمس پہ وہ بچہ جو ہے وہ ایکچولی عام انسان نہیں ہے, وہ مکمل انسان تو ہے لیکن وہ مکمل خدا بھی ہے. اب یہ بات آپ کو اچھی نہیں لگے گی, لیکن میں آپ کو اپنے طرف سے نہیں بتا رہا, بائبل مقدس ہمیں یہ بات بتاتی ہے. جو لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ خدا جو ہے وہ انسان بن کے اس دنیا میں آیا, جس کا نام یسوع المسیح ہے, اور انہوں نے آ کے اسی لیے یہ تمام معجزات کیے. ان کے پاس یہ ایبسولوٹ اتھارٹی ہے, یہ مطلق اختیار جو ہے ان کے پاس ہے. اور مطلق اختیار کیوں ہے؟ کیونکہ کسی نے آج تک کسی کو زندہ نہیں کیا سوائے خدا کی اتھارٹی سے. اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں, یہاں پہ میں آپ کو ایک اور قصہ بتاؤں گا جو ہمیں پہلی سلاطین میں ملتا ہے. پہلی سلاطین, وہاں پہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس کا 17 باب, 17 چیپٹر 17 اور 17 ایسے لے کے 24 آیت تک ہم ایک اور قصہ سنتے ہیں, جو کہ بیان ہی اسی طرح کا قصہ ہے, ایک بیوہ کا قصہ ہے. جی ایلڈر صاحب, ذرا ہمیں وہ قصہ پڑھ کے سنائیں, اور غور سے سنیے گا یہاں پہ کیا ڈفرنس ہے ان دونوں قصوں میں.
ان باتوں کے بعد اس عورت کا بیٹا جو اس گھر کی مالک تھی بیمار پڑا, اور اس کی بیماری ایسی سخت ہو گئی کہ اس میں دم بھی باقی نہ رہا. سو وہ ایلیا سے کہنے لگی, اے مرد خدا, مجھے تجھ سے کیا کام؟ تو میرے پاس آیا ہے کہ میرے گناہ یاد دلائے اور میرے بیٹے کو مار دے. اس نے اس سے کہا, اپنا بیٹا مجھے دے. اور وہ اسے اس کی گود سے لے کر اس کو بالا خانہ پر جہاں وہ رہتا تھا لے گیا, اور اسے اپنے پلنگ پر لٹایا, اور اس نے خداوند سے فریاد کی اور کہا, اے خداوند میرے خدا, کیا تو اس بیوہ پر بھی جس کے ہاں میں ٹکا ہوا ہوں اس کے بیٹے کو مار ڈالنے سے بلا نازل کی؟ اور اس نے اپنے آپ کو 3 اس لڑکے پر پسار کر خداوند سے فریاد کی اور کہا, اے خداوند میرے خدا, میں تیری منت کرتا ہوں کہ اس لڑکے کی جان اس میں پھر آ جائے. اور خداوند نے ایلیا کی فریاد سنی اور لڑکے کی جان اس میں پھر آ گئی اور وہ جی اٹھا. تب ایلیا اس لڑکے کو اٹھا کر بالا خانہ پر سے نیچے گھر کے اندر لے گیا اور اسے اس کی ماں کے سپرد کیا, اور ایلیا نے کہا, دیکھ تیرا بیٹا جیتا ہے. تب اس عورت نے ایلیا سے کہا, اب میں جان گئی کہ تو مرد خدا ہے اور خداوند کا جو کلام تیرے منہ میں ہے وہ حق ہے.
بہت شکریہ. اب یہاں پہ ایلیا نبی ہیں, وہ آپ کو معلوم ہے کہ ایلیا نبی 500 پہلے خداوند یسوع مسیح سے آئے تھے. اور جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں, ایلیا نبی بہت بڑے نبیوں میں سے ہیں. بہت بڑے نبیوں میں سے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ٹرانسلیٹ ہو کے زندہ آسمان پہ اٹھائے گئے, چیریٹس آف فائر آپ نے دیکھی ہیں, کہ وہ خداوند کے پاس چلے گئے. اور اس کے بعد جب خداوند یسوع مسیح جو ہیں, وہ اگر آپ بائبل مقدس کو جانتے ہیں تو ایک دفعہ وہ اس پہاڑ پہ گئے جس کا نام ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پہاڑ جو ہے وہ ٹیبور کا پہاڑ ہے. اور وہاں پہ جب پہاڑ پہ گئے تو خداوند یسوع مسیح کی شکل جو ہے وہ اتنی نورانی ہوگی, اور ان کے ساتھ 2 تھے, اور وہ 2 کون تھے؟ ایک موسیٰ تھے اور دوسرا ایلیا تھے. इसलिए मैं कह रहा हूं कि एलिया का मकाम जो है नबियों में सबसे बड़ा मुकाम है, और खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात की निशानदही भी की है जब बाइबल मुकद्दस में आप पढ़ते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, यहाँ पे एलिया नबी हैं और उन्होंने एक बेवा के घर ठहरे हुए हैं और उसका बेटा भी मर जाता है, और वो फिर उसके बाद एलिया जो है वो उसको जिंदा कर देते हैं। जब वो जिंदा करते हैं तो क्या उनकी दुआ क्या है? अब ये बात गौर करने वाली है जो मैं आपको बताने वाला हूं कि इसमें और दूसरी उसमें वाकये में क्या फर्क है। वहां पे लिखा है कि उसने खुदावंत से फरियाद की और कहा कि अय खुदावंत, मेरे खुदा, क्या तूने इस बेवा पर भी जिसके हां मैं टिका हूं उसके बेटे को मार डालने से बला नाजिल की? और उसके बाद वो खुदा का नाम लेता है और वो लड़का जिंदा होता है। अब यहां पे खुदावंद यीशु मसीह भी एक बेवा के ऊपर उन्होंने तर्स खाया है, लेकिन यहां पे वो क्या कहते हैं? वो ये नहीं कहते कि आए खुदावंद तू उस पे तर्स खा, लेकिन वो कहते हैं, उससे कहा 14वीं आयत में उसने उससे कहा कि आए जवान, मैं तुझसे कहता हूं कि उठ। अब इसमें फर्क है, अब देखें कि इसको कहते हैं एब्सोल्यूट अथॉरिटी, इसको कहते हैं मुतलक इख्तियार, और ये खुदावंद यीशु मसीह ने इसके मुतालिक हमें मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील में भी इस बात की निशानदही की है, और वहां पे मत्ती रसूल 28वां बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा हुआ है, और यीशु ने पास आकर उनसे ये बातें कही। अब ये कब कही? जब खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो अपनी क्रूसीफिक्शन के बाद, जिंदा उठने के बाद वो आसमान पे जाते हैं, अपने शागिर्दों को कहते हैं, और वहां पे उन्होंने कहा है और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। किसको दिया गया है? मुझे दिया गया है, यानी खुदावंद यीशु मसीह के पास वो इख्तियार है, क्योंकि आसमान और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। अब ये इसमें और उसमें बहुत फर्क है। आप देखते हैं यहां हमें मालूम पड़ता है कि खुदावंद यीशु मसीह ही खुद खुदा है, उनके पास ये इख्तियार है। और आखिर में आपको ये बताना चाहता हूं, आखिरी आयत जो है वो पहला यूहन्ना उसका 5वां बाब और उसकी 12वीं आयत आपको बता के मैं ये खत्म करूंगा, क्योंकि वहां पे लिखा है कि whosoever has the son has life and who does not have life। उर्दू में क्या लिखा है?
पहला यूहन्ना
उसका 5वां बाब और 12वीं आयत। हाँ जी,
जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं है।
अब ये आप बात सोच लीजिए, आप इस पे गौर कीजिए, आप इसको जानिए, आप इसको पहचानिए, आप इसकी तलाश करें, आप इसको रिसर्च करें, फिर आपको पता चलेगा कि ये एब्सोल्यूट अथॉरिटी जो है किसके पास है। अगर किसी और के पास है तो मुझे भी बताइएगा, मैं बड़ी खुशी से मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर ये अथॉरिटी खुदावंद यीशु मसीह के पास है, जो कि हमें बाइबल मुकद्दस बड़ी क्लियरली बताती है, जब उन्हें मौत पे इख्तियार है, जब वो उस जनाजे को टच करते हैं और वो लड़का जो है खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो जानते थे कि इस बेवा का कोई यहां पर नहीं है, इस बेवा को बहुत मदद की जरूरत है, उन्होंने उस पर तरस खाया और वो बेटा उसका जिंदा किया। ये है वो खुदा जिसको हम जानते हैं, ये है वो खुदा जिस पे हमारा ईमान है, ये है वो खुदा जो हमारी मदद के लिए हमेशा तैयार होता है, आज भी, कल भी और हमेशा के लिए। उसने कहा है कि दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूं। इसलिए मेरे भाई और मेरी बहन, उस खुदा को जानने की जरूरत है, उस खुदा को जानने की जरूरत है जिसके बाद बिल्कुल मुतलक इख्तियार है, मुकम्मल इख्तियार है, एब्सोल्यूट अथॉरिटी है। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आमीन।
आ यीशु नासरी, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਤੇਰੀ ਗਿਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੂਫਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਤੇਰੀ
यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी। आज हमें खुद हम यीशु मसीह की ज़रूरत है। जैसा कि आप जानते हैं और मैसेज आपने सुना कि आज भी दुनिया में कितनी परेशानियां हैं, दुख हैं, तकलीफें हैं, लेकिन गुनाह बहुत बढ़ गया है। लेकिन वो गुनाह की मजदूरी जो मौत है, वो खुदावन यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठाकर हमें हमेशा की ज़िंदगी दी है। मैं आपके सामने आप इत्तला रखना चाहता हूँ, इससे पेशतर मैं टेलीफोन नंबर बता दूँ स्टूडियो का। टेलीफोन नंबर है 416-620-1778। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है। अगर आपका कोई सवाल है आज के मैसेज के हवाले से तो आप ज़रूर कीजिए, पास्टर जेम्स लूक आपके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। उसी के साथ साथ बताना चाहता हूँ कि हमारी जो उर्दू और हिंदी की जो इबादत है, हर महीने के पहले और तीसरे जुमा को शाम 7 बजे होती है। हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आप उर्दू और हिंदी में अपनी ज़ुबान में इबादत करना चाहें तो आप ज़रूर हमसे राबता करें। हमारा चर्च का जो नाम है क्राइस्ट आवर किंग लूथरन चर्च, एड्रेस है 2705 इस्लिंगटन एव 2150 डंडा स्ट्रीट वेस्ट मिसिसागा, और टेलीफोन नंबर पास्टर जेम्स लू का टेलीफोन नंबर 416-454-2581 और मेरा टेलीफोन नंबर 647-339-0397 मेरा टेलीफोन नंबर है। उसी के साथ साथ बताना चाहता हूँ कि अगर आप डोनेशन देना चाहते हैं इस प्रोग्राम के लिए, हेल्प करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, तो डोनेशंस आर एक्सेप्टेड थ्रू द वेबसाइट एट www.masikiawaz.ca और बाय मेलिंग ए चेक टू द मसीकी आवाज डायरेक्टली To Christ Our King Lutheran Church, 2150 Dundas Street, West Mississauga, तो आपको इनकम टैक्स की रसीद भी मुहैया की जाएगी। उसी के साथ साथ बताना चाहता हूँ कि आवर सेवियर लूथरन चर्च की जानिब से भी आपको दावत दी जाती है, जो हर इतवार बाद दोपहर 1 बजे इबादत लेते हैं उर्दू और हिंदी में, और उनके जो चर्च का एड्रेस है 2705 इस्लिंगटन एवेन्यू इटोबिको, और उसके लिए आप पास्टर जोसेफ सिंह को टेलीफोन कर सकते हैं, जिनका टेलीफोन नंबर है 416-476-4242, उनका टेलीफोन नंबर है। उसी के साथ साथ बताना चाहता हूँ कि हमारी जो इंग्लिश की इबादत है, हर इतवार 10 बजे होती है सुबह, और पास्टर क्रिस्टी जो हैं वो इंग्लिश में हमारी इबादत लेते हैं और बाइबल स्टडी भी करवाते हैं। अगर आप उस मिसिसागा के एरिया में रहायश पजीर हैं या आपके बच्चे अजीज जाना चाहें तो आप ज़रूर हमसे राबता करें। उसी के साथ साथ पास्टर जेम्स लूक, जैसा कि मैं हर इतवार बताता हूं कि रेडियो प्रोग्राम के बाद वो सीधा लिविंग फेथ लूथरन चर्च ऑरेंजविल में इंग्लिश में इबादत करवाते हैं, लेते हैं। और अगर आपके अजीज बच्चे जो उर्दू नहीं जानते इंग्लिश में इबादत करना चाहें तो आप पास्टर जेम्स लूक से राबता कर सकते हैं, उनका टेलीफोन नंबर मैंने बताया है 416-454-2581 उनका टेलीफोन नंबर है। लास्ट जो है वो ये है कि आप जानते हैं कि पास्टर जेम्स लूक हर साल होली लैंड ग्रुप लेके जाते हैं, उनको बड़ी कोशिश करते हैं कि हर साल जाया जाए, और वो खुदा की मदद से वो ये दफ़ा छठी दफ़ा जा रहे हैं अपने ग्रुप को लेकर, और मेरी तो दुआ है खुदा उन्हें हिम्मत और ताकत दे, ज़िंदगी दे, इसी तरह वो लेके जाते रहें। जिन लोगों को मौका नहीं मिलता वो भी जाकर उन जगहों को देख सकें जहाँ खुदा यीशु मसीह पैदा हुए, जहाँ उन्होंने अपनी जवानी में ज़िंदगी गुजारी, जहाँ उन्होंने तमाम दुनिया के लिए अपनी जान सलीब पर कुर्बान कर दी, जहाँ के उन्होंने सलीब, मौत और कब्र पर फतह पाई और ज़िंदा होकर आसमान पर गए, और जहाँ के उन्होंने फिर आना है। बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि उन जगहों को देख सकें। पास्टर जेम्स लू कहते हैं कि 43 रजिस्ट्रेशन जो हैं वो हो चुकी हैं और 7 की जगह है। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप ज़रूर उनसे या मुझसे रब्ता करें। अक्सर पादरी साहब लोग मुझे कहते हैं यार आखिर में भी आप कुछ ना कुछ कर सकते हो, आप कोई तिगड़म लगाओ। मैंने कहा जी मैं क्या तिगड़म लगा सकता हूँ, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि आप देर ना कीजिए, इससे पेशतर देर हो जाए देर ना कीजिए, तो ये मैं कह सकता हूँ। और आप इसके लिए फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए पास्टर जेम्स रूक्स रابطہ कर सकते हैं।
थोड़ा सा मैं इसमें इंक्लूड करूं।
हाँ जी,
वो ऐसा है कि आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि क्योंकि अभी जो है इसके बाद किराए जो हैं वो ज्यादा हो जाएंगे।
हाँ जी।
और फिर आप अगर लेट अगर रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपको ख्याल बाद में आएगा, तो फिर आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे।
जा सकेंगे लेकिन पैसे ज्यादा
देंगे। हाँ, तो ये आप पे डिपेंड करता है। एल्डर साहब, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक वो अब तो खुद भी पादरी हैं वो, लेकिन उनका नाम है सिद्दीक पॉल।
अच्छा।
सिद्दीक पॉल साहब जो हैं वो कॉन्वर्ट हैं, वो मसीहत में काफी मुश्किल तरीके से आए थे, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और उनको हमने मधु किया है अक्टूबर 24 से लेके और 30 तक। वो हर रोज शाम को एक या दो घंटे की क्लासेस लेंगे जिसमें वो हमें बताएंगे कि क्यों हम खुदावंद यीशु मसीह को खुदा जानते हैं, क्यों हम खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बेटा कहते हैं, क्यों कुछ लोग जो समझते हैं कि बाइबल बदल गई, वो इन बड़े हॉट सवालों के जवाब जो हैं वो देंगे। और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, और ये सब के लिए है, ये सिर्फ मसीहों के लिए नहीं बल्कि हमारे मुसलमान दोस्त जो हैं उनके लिए भी है, खुसूसन उनके लिए है, ताकि वो इन बातों को क्लैरिफाई कर सकें। और हिंदू सिख जो भी आना चाहें वो आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगी और वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारे पास है। मुझसे रब्ता करें, एल्डर साहब से रब्ता करें, ताकि हम वो आपको ये मौका, बड़ा सुनहरी मौका है जो आप सिद्दीक पॉल को सुनेंगे और उनको आप उनसे बातचीत भी कर सकते हैं, सवाल जवाब उनके साथ आप कर सकते हैं। इस दौरान में वो ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, बड़ी दूर से आ रहे हैं, इसलिए उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। ये 24 अक्टूबर से लेके 28 अक्टूबर तक ऑल सेंट्स बाइबल चर्च जो के डेरी रोड पे है, वहाँ पे रोज़ाना शाम को 6 से 8 बजे तक ये क्लासेस होंगी। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा आप ज़रूर वहाँ पे तशरीफ लाएं। बहुत शुक्रिया
भाई साहब। मैं जैसा कि आप जानते हैं कि अक्सर प्रोग्राम के बाद सवाल होते हैं, वैसे तो कुछ लोग हैं जो सवाल करना चाहते हैं, अगर उनके जहन में कोई बात हो तो आप हमें स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 416-620-1778। उसी के साथ साथ बताना चाहता हूं कि अगर आप खुदावंद के कलाम से फैज़याब होते हैं और अगर आपको उर्दू हिंदी पंजाबी में खुदावंद का जिंदा कलाम बाइबल मुकद्दस चाहिए तो आप हमें रब्ता करें, हम आपको ज़रूर आपके एड्रेस पे भेज देंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ आपका नाम और एड्रेस चाहिए हमें और हम रखते नहीं, उसके बाद ये ना सोचिए कि आपको कंटिन्यूसली हम बादल करते रहेंगे। नो, जस्ट ओनली वन टाइम वी टेक योर एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर एंड नेम एंड वील सेंड इट बाइबल टू यू वंस यू आर कन्फर्म दैट एंड वी आर सो हैप्पी वी कैन डू समथिंग फॉर यू, बाइबल मुकद्दस आपको भेज सकें।
और एल सब उसके लिए मैं ये कहूंगा कि जो हमें कांटेक्ट करेंगे, चाहे वो फोन पे करें या ईमेल के जरिए करें, उनको हम एक बड़ी खूबसूरत म्यूजिकल सीडी भेजेंगे।
अच्छा जी।
फ्री भेजेंगे, ठीक है।
तो मैं भी कांटेक्ट कर सकता
हूँ? आप नहीं कांटेक्ट कर सकते, आप आपको वैसे ही हम दे देंगे, लेकिन वो सीडी बड़ी खूबसूरत है, वो बड़ी क्लासिकल किसी ने बनाई हुई है और बड़ी खूबसूरत बनाई हुई है, हैमिल्टन में वो रहते हैं, मुझे नाम उनका भूल गया लेकिन उस पे है।
अच्छा। हाँ। तो इसका मतलब है ये सरप्राइज है कि जो भी अगर कोई कॉन्टेक्ट करेगा
हाँ
तो वो सीडी लेंगे, लेकिन आप ये मेरा ख्याल बताना नहीं चाहते क्या सरप्राइज है। हाँ, जब वो लें तो फिर सुने तो फिर आपसे रब्ता करें कि वाकई ये सीडी कितनी अच्छी मेहनत से तैयार की गई है। मैं पाई साहब पूछना चाहता हूँ, आपने बताया खुदावंद के जिंदा कलाम में से खुदा की अथॉरिटी, खुदा में यीशु मसीह की अथॉरिटी, मुकम्मल इख्तियार उसकी कुदरत के मुतालिक, तो क्या यीशु वाकई ही खुदा है और इंसान कैसे खुदा बन सकता है अगर खुदा को ये फॉलो करें, या क्या इंसान भी खुदा बन सकता है?
बिल्कुल बिल्कुल बन सकता है।
हाँ जी,
क्योंकि जब देखें ये इसको ईमान پہ بھی کہا جا سکتا ہے،
ایمان کے ذریعے،
ایمان کے ذریعے سے، کیونکہ ایمان کے ذریعے سے اگر آپ ایک کتاب کو گرو کہہ سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں، ایک انسان جو ہے وہ خدا کیوں نہیں بن سکتا،
ہو سکتا ہوں،
ٹھیک ہے نا، اور یہ خدا کا انتظام ہے، میرا انتظام نہیں ہے یا میری سوچ نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ خدا کا انتظام ہے جو اس نے ہمیں بائبل مقدس میں بتایا ہوا ہے کہ اس طرح سے خدا جو ہے وہ آپریٹ کرتا ہے، اس طرح سے، جیسے میں نے بڑے کلیئرلی آپ کو بتایا تھا تفصیل سے کہ کس طرح سے خدا، اور خدا کے پاس، صرف خدا کے پاس دو چیزیں ہیں جو خدا کے پاس ہیں اور کسی کے پاس نہیں ہیں، اور وہ کیا ہے، گناہوں کی معافی خدا کے پاس ہے اور ہمیشہ کی زندگی خدا کے پاس ہے۔ ہمیشہ کی زندگی اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ مر کے زندہ ہوتے ہیں، آپ زندہ ہوں گے تو ہمیشہ کی زندگی پائیں گے نا، لیکن اگر آپ جب مری گئے تو مرا ہوا انسان جو ہے وہ زندگی نہیں پا سکتا۔ ہمیں بائبل مقدس بار بار بتاتی ہے، اور آپ کو لازرس کی مثال بھی معلوم ہے کہ لازرس جو ہے وہ 3 دن سے مرا ہوا ہے، قبر میں پڑا ہوا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کو خبر ملتی ہے، کیونکہ وہ ان کا بہت دوست بھی تھا، خداوند یسوع مسیح ان کے گھر میں ٹھہرتے تھے اور ان کو تعلیم دیتے تھے، اور جب ان کو خبر ملتی ہے تو وہ جاتے ہیں وہاں پہ، تو کیا کہتے ہیں، آئے لازرس قبر سے باہر نکلا، اور وہ قبر سے باہر نکل آتا ہے۔ اب یہ اختیار جو ہے یہ کسی اور کو نہیں دیا گیا، یہ صرف خدا کو اختیار دیا گیا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے بڑا کلیئرلی کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ قبر سے باہر نکل، میں تجھ سے کہتا ہوں کہ زندہ ہو جا، میں تجھ سے کہتا ہوں۔ اب جب ان کی اپنی اتھارٹی ہے، تو چونکہ یہ اتھارٹی صرف خدا کے پاس ہے، اس لیے ہم جان سکیں تاکہ خداوند کو اس دنیا میں جو ہے وہ اختیار ہے، اور ہمیں اعمال کی کتاب میں یہ بڑا کلیئرلی بتایا گیا ہے 4:12 آیت میں کہ دنیا کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ کسی کے پاس جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، کوئی اور نام نہیں بخشا گیا
جس کے وسیلہ سے ہم نجات،
اگر کوئی ہے تو مجھے بتائیے، ٹھیک ہے نا،
ٹھیک ہے۔ لیکن بھائی صاحب، یہ خداوند یسوع مسیح خود بتاتے ہیں کہ اگر وہ اس پر ایمان لائیں گے تو انہوں نے کہا ہے، فرمایا ہے کہ تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے،
نہیں
وہ اس کا مطلب ہے کہ خداوند مسیح اختیار دیتا ہے انسان کو جب اسے اس کی نزدیکی حاصل کرتے ہیں، اس کے ساتھ چلتے ہیں اور اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، تو پھر یہ خداوند،
آپ نے ایک لفظ کہا ہے، وہ دیتا ہے اختیار،
دیتا ہے
اختیار اسی کے پاس،
اسی کے پاس ہے،
ہاں یہ بات غور کرنے والی ہے کہ اختیار انہی کے پاس ہے، اگر کوئی اس کو ڈیلیگیٹ کر دیتا ہے اپنی اتھارٹی کو، دیٹس اپ ٹو ہم، رائٹ،
تو یہ مطلب ہے کہ
اسی لیے ان کے نام سے بڑے بڑے معجزات ہوتے ہیں، آج بھی ہوتے ہیں، اور اسی لیے میں یہی کہتا ہوں اختیار صرف انہی کے پاس
ہے۔ اور اس کے لیے اگر کسی نے جاننا چاہے تو متی رسول میں، مرکز رسول میں، لوکا رسول میں، دوسرا کرنتھیوں، مکاشفہ میں یہ آیات پائی جاتی ہیں جہاں مسیح اختیار دیتا ہے۔ تو الٹیمیٹلی یہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح مکمل انسان اور مکمل خدا ہیں، اور ان کے پاس یہ سارا اختیار ہے۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، چھوٹا سا سوال ہے، اگر وہ واقعی خدا ہے تو پھر انسان، میں کہوں گا، اس پر کیوں اعتبار نہیں کرتے، یقین کیوں نہیں کرتے؟ ہاں جی
دیکھیں، مسیحت میں کوئی مجبوری نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
رائٹ، مسیحت میں کوئی کسی کو وہ ڈنڈا لے کے کوئی نہیں چڑھا ہوا کہ تم نے یہ ضرور کرنا ہے، مسیحت میں کوئی ظلم نہیں ہے کہ اگر تم نہیں قبول کرو گے تو میں تمہاری گردن کاٹ دوں گا، ٹھیک ہے،
مسیحت میں
آزادی ہے، اور آزادی اس بات کی ہے کیونکہ یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ اس چیز کو قبول کریں یا نہ کریں۔ دیکھیں، انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو میں جانتا ہوں یا جو میں، جس پہ میرا فیتھ ہے یا ایمان ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ لیکن جب آپ اس کو ریسرچ کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے ریسرچ کیا ہے، وہ اسی بات پہ پہنچتے ہیں کہ نہیں، خداوند یسوع مسیح ہی خدا ہے، وہی مکمل انسان ہے، وہی مکمل خدا ہے۔ اور جب اس بات کو وہ پہچان جاتے ہیں تو ان کو हमेशा की जिंदगी मिलती है खुदा के साथ। जो लोग हमेशा की जिंदगी बसर करेंगे वो वही लोग होंगे जो खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करेंगे।
और जब
मेरे भाई और मेरी बहन आपको ये सोचने की जरूरत है
और
आप कैसे ईमान पे कायम हैं।
जब इंसान आदमी बच्चा जवान औरत खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर ईमान ले आते हैं उसे अपना मुक्तिदाता नजात दहिंदा कबूल करते हैं तो फिर वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं।
इसीलिए कहा है कि जिसके पास बेटा है
उसके पास
जिंदगी है, जिसके पास बेटा नहीं है उसके पास जिंदगी भी नहीं है,
क्योंकि जिंदगी और मौत का मालिक वो।
दिस मे नॉट बी अ गुड न्यूज फॉर यू मेरे भाई और मेरी बहन, जब तक आप, लेकिन इट्स अ वेरी गुड न्यूज फॉर यू अगर आप इस पे गौर करेंगे तो। यही बात है कि आप जरूर इस बात पे गौर कीजिएगा। अगर आपको बाइबल मुकद्दस चाहिए हम आपको फ्री में भेज सकते हैं किसी भी जुबान में, पंजाबी में हो, हिंदी में हो, चाइनीज में हो, कैसी भी जुबान हो। हम इसीलिए बाइबल मुकद्दस को ये तमाम जुबानों में ट्रांसलेट किया गया है ताकि आपके पास जो है वो पहुंच सके। और बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं और हम उनको भेजते हैं, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप इस बात पे गौर करें, और जब गौर करेंगे तो आप खुद ब खुद, ये मैं आपको हमेशा एक बात चैलेंज करता हूं कि ये किताब आपकी जिंदगी जो है वो बदलने वाली है।
शुक्रिया भाई साहब
जी।
वक्त खत्म होता है जा रहा है बड़ी जल्दी से, लेकिन हम चाहेंगे कि खुदावंद की पाक मर्जी से अगले हफ्ते फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुदावंद आपको और आपके खानदान को बरकत दे और अपनी पनाह में रखे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।
सामीन, हम आपके बहुत शुक्र गुजार हैं कि आपने प्रोग्राम मसीह की आवाज़ को मुकम्मल तौर पर सुना। उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम के जरिए आपने बहुत बरकत पाई होगी। आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। अपना और अपने अजीज व अकारिब का ख्याल रखें। अगले इतवार को सुबह 8 से 9 बजे तक हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। खुदा ने के बान मसीह यसु का फजल आप सब पर हो, आमीन।
The views expressed on the preceding program may not necessarily be those of the owner or management of WTOR radio station.
Divorce ya custody di ladai zindagi di sab ton aukhi ladai hundi hai kyunki tusi us shakhs naal lad rahe hunde ho jis naal tuhanda ghar parivar te tuhade bacche saanjhe ne us waqt kai sawal uthde ne ki property kis kol jayegi custody kis nu milegi te zindagi di sab ton pyari daulat bacche kis kol rahenge।
SNS Lawyers को इन्हां सारे सवालां दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानने ले या सलाह लेने ले आज ही SNS Lawyers नू कॉल करो 416-655-2000।
ਘਰ ਨਵਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸ਼ੇਡਸ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸ਼ਟਰ, ਬਲਾਈਂਡਸ, ਵਰਟੀਕਲਸ, ਰੋਲਰ ਸ਼ੇਡਸ, ਹਨੀਕੈਂਪਸ, ਪਲੀਟਡ ਸ਼ੇਡਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਘੱਟ ਆਵੇਗਾ। ਦਾ ਬਲਾਈਂਡ ਸ਼ੇਡਸ ਆਊਟਲੈਟ .com ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ 416-803-1043 416-803-1043 The Blind Shades Outlet.com
Adnan Bashir of Cityscape and Buzzmax.ca present Living Legend Ustad Rohak Fateh Ali Khan live in concert. On Friday, October 18th, 2019, at Roy Thompson Hall, Toronto. For tickets and sponsorships, call 416-989-8555 or visit roythompsonhall.com. Another mega event by Digital Media Limited and Hum Television Network.
ना खरीद फर्नीचर रास्ते से, ना लेना सूट डॉलर मार्ट से, ना पीना बासी कॉफी अच्छा लगता नहीं, ना बनाओ इंटर्न को सीईओ, ना खिलाओ फास्ट फूड क्लाइंट को, ना लगाओ मस्का बॉस को अच्छा लगता नहीं, हमें मिलता है वही जो हम चाहते, यूज ओरिजिनल एचपी टोनर। चिंता होगी दूर,
100% रिलायबल, एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल, ऑलवेज ट्रस्ट ओरिजिनल एचपी टोनर।
आप सुन रहे हैं डब्ल्यू